ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओके, हम लोग भूमिका पढ़ रहे हैं भगवद गीता की, और मेरे पास भगवद गीता यथा रूप है, और हम पेज नंबर 2 पे हैं, एक्चुअली 3 पे, जहां से श्रील प्रभुपाद अपनी भूमिका शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट भूमिका के बारे में बताया जाए तो प्रभुपाद ने सबसे पहले अपनी भगवद गीता पर कमेंट्री लिखने से पहले भूमिका लिखी थी, और आई थिंक एक बार उनकी वाइफ ने बेच भी दी थी वो चाय के लिए, और प्रभुपाद ने फिर दोबारा लिखी थी इसको। और इस पे ऑफ कोर्स एक अलग से किताब भी है, गीता सार ही है ना, जिस जो सिर्फ भूमिका के ऊपर किताब है। सो भूमिका में श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता की समरी दी है, सार दिया है एक, और शुरुआत कहां से कर रहे हैं, इस भूमिका के तीसरे पेज का पहला जो स्टेटमेंट है वो है भगवद गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। सो गीता उपनिषद क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार है। अब सारे उपनिषदों का सार इसका मतलब क्या है, उपनिषदों में ऐसा क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, तब पता लगेगा कि गीता सारे उपनिषदों का सार है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। सो उपनिषद क्या होता है, उपनिषद स्पेशलिटी क्या है, उपनिषद में इतने बड़े सारे वेद हैं और वेदों में भी कई भाग हैं, तो हर वेद के 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। हर वेद इन 4 भागों में डिवाइडेड है। वेद में कई चीजें, यज्ञ भी है और ज्ञान भी है, साइंस भी है, उपनिषद भी है। उपनिषदों में क्या है, उपनिषदों में भगवान ने प्रिंसिपल्स दिए और बाकी वेदों में भगवान ने डिटेल्स बताई है। या दूसरे शब्दों में, जैसे मान लीजिए गाड़ी क्या है, गाड़ी के बारे में बताना है, गाड़ी चलते कैसी है वो बात अलग है, मैकेनिक्स। तो उसी प्रकार करना क्या है, यज्ञ, सेवा, वो सारी चीजें भगवान ने वेदों के पहले भाग में बताई है, और उपनिषद में भगवान ने बताया है कि क्यों करना है, प्रिंसिपल क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है वो पहले, क्यों करना है वो उपनिषद है। उपनिषद क्यों, अब जाना आता है क्यों करूं, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों चल रहा है, वाय। इसलिए उपनिषदों की बहुत महत्वपूर्णता है, क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले समझना तो पड़ेगा क्यों करना है, नहीं भक्ति क्यों करनी है, करने के लिए करनी है नहीं, सेवा क्यों करनी है, ये सब समझने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जाने क्यों करनी है तो फिर करी क्यों नहीं। सो उपनिषदों में ही है, और भगवद गीता क्या, भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार है, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उपनिषदों में वो भगवान ने भगवद गीता में बता दी है। सो उपनिषद कितने हैं, मेन प्रधान उपनिषद 12 हैं, मगर हैं कितने, प्रधान 12 हैं कितने, अभी तक हमारे पास कम से कम 200 तक उपनिषद हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, 108 तो कम से कम है ही, और एक उपनिषद को भी आप पूरी लाइफ में समझ लो बहुत बड़ी बात है। उपनिषद का एक श्लोक ही पूरी लाइफ हम पढ़ सकते हैं, एक श्लोक के कई 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 मतलब है, जैसे हमारे स्कॉन में वो नहीं आपके ईसो, तो ईसो उपनिषद, अब ईसो उपनिषद जो पहला श्लोक है, नहीं उससे पहला है ना, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते। अब इस श्लोक की कम से कम 20 मतलब है, कम से कम जो मुझे पता है, एटलीस्ट 20 तो नहीं, एटलीस्ट मुझे 10 पता है इसके मतलब, जो मुझे ही पता है। और अगर आप स्कॉलर से पूछो वो लोग आएंगे इसके हजार मतलब है। और अगर आप और बड़े स्कॉलर से पूछो, वैदिक स्कॉलर से, तो कहते हैं इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट अनंत मतलब है एक ही श्लोक का, इसको कहते हैं उपनिषद, उपनिषद इसको कहते हैं। और भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार है, आप देख सकते हो। अब वो हमारे बस की नहीं है पढ़ना इतना सब कुछ, कैसे निकालोगे वहां से सब कुछ। तो इसलिए भगवान ने सारा निचोड़ निचोड़ के सब भगवद गीता का सारे उपनिषदों का सार हमें दे दिया। भाई आपको जानना है ना क्यों करना है भक्ति, क्यों क्यों कर क्यों अपने जीवन को, जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है, सारी क्वेश्चंस सारी भगवद गीता में। और ये एक्चुअली पहले पॉपर्ट में श्रील प्रभुपाद ने बताया, और प्रभुपाद इस पॉपर्ट में भी लिख रहे हैं कि इस किताब की जरूरत क्या थी, जब पहले बहुत सारे किताबें थी। वो लिख रहे हैं कि पहले अंग्रेजी में नहीं थी एक्चुअली, इनफैक्ट हिंदी में तो चलो गीता प्रेस की थी, मगर प्रभुपाद ने बोला गीता प्रेस की गीता पढ़ के कौन शुद्ध भक्त बना बता दो। प्रभुपाद से इंटरव्यू पूछ रहे थे तो प्रभुपाद से कह रहे थे, प्रभुपाद ने कहा मुझे एक आदमी दिखाओ जो गीता प्रेस की बुक किताब पढ़ के शुद्ध भक्त बनाए। भक्त जरूर बने, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार है, कृष्ण के बारे में पता है सब कुछ, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने अपना जीवन समर्पण ही कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस किताब लिखने की जरूरत थी, क्योंकि प्रभुपाद ने जो किताब लिखी, जो टीका लिखी है भगवद्गीता की, उसकी टीकाओं में और कई टीकाओं में बहुत फर्क है। मैंने कम से कम 600 टीकाएं पढ़ी है भगवद्गीता पे, कम से कम है एटलीस्ट पढ़ी नहीं, देखी तो हुई है मैंने। सो कई लोगों ने कहीं कहीं लिखी, और जितनी भी लिखो पढ़ोगे ना किताबें टीकाएं, उसमें एक चीज की कमी है, और वो कमी क्या है, वो है कमी जोश की, वो नहीं है। सारा है ज्ञान, मगर जोश नहीं है कि भगवान की, भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देना है, वो चीज नहीं है। इसलिए आप देख लो प्रभुपाद की भगवद्गीता पढ़ के क्या होता है, जोश आ जाता है, बस यही आता है, नहीं जोश आ जाता है। एक प्रभुपाद गीता में अग्नि है, आग है, मतलब प्रभुपाद गीता पढ़ो तो लगेगा प्रचार कर डालो पूरे संसार में, और कोई गीता पढ़ो तो लगेगा भजन करो अपना, हरे कृष्णा, सीरियसली बहुत फर्क है। अब कोई भी गीता पढ़ लो, चलेगा सबको छोड़ के बस बैठ के ओम, प्रभुपाद गीता पढ़ो तो लगेगा पूरे दुनिया को बदल डालूंगा। इट्स लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। सो क्योंकि ये गीता किसने लिखी है, गीता शुद्ध भक्त ने लिखी है, नहीं वही प्रचार हम बदल जानी चाहिए, वो और कमेंट्री पढ़ के नहीं लगेगा, और कमेंट्री पढ़ के कभी नहीं लगेगा आपको, पढ़ लो जाके इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी, नहीं लगेगा। सो ये प्रभुपाद की गीता में स्पेशलिटी है, जो प्रभुपाद ने अपनी किताब में डाली है वो दिखाई नहीं देगी आपको। तो अगर आप पानी गर्म करोगे तो गर्म पानी में अग्नि होती है, नहीं होती है, दिखाई देती है, आपको ऐसे उन्हें दिखाई देगी। ऐसी इसमें वैसे तो सेम ही लगेगी, मगर जो पढ़ने वाला है वो बता सकता है कि इसमें फर्क क्या। और इसीलिए तो इस किताब को पढ़ के कितने सारे यंग लोग, प्रभुपाद ने बोला है कि मेरे गीता को पढ़ के कितने सारे यंग लोग इस मूवमेंट में आ गए, इससे पहले एक भी जवान आदमी नहीं आ रहा था, सब बूढ़े ही आ रहे थे, है नहीं, सब बूढ़े आ रहे थे। सो प्रभुपाद ने इसलिए लिखा, एक भगवद गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। और इस पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमने ये संस्करण शुरू किया है, और इसको पढ़ के हर व्यक्ति धीरे धीरे भक्त बन जाएगा। दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद ने शुरू किया है, भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवद गीता को समझे कैसे, पॉइंट ये, क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल है, नहीं है। सो क्या भगवद गीता की किताब को समझने के लिए कोई और किताब की जरूरत है? जनरली क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद ऐसा, क्योंकि उपनिषदों को समझने के लिए आपको और किताबों की जरूरत होती है। कौन सी किताबों की जरूरत है? एटलीस्ट 6 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको उपनिषद पढ़ने हैं। कौन से हैं, किसी को पता है कौन सी 6 किताबें? क्या है? वेदांग, षट वेदांग है, वेदांग पढ़ने होते 6 किताबें, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, 6 चीजें, ये 6 किताबें। ये 6 किताबें पढ़ के व्याकरण समझनी पड़ेगी आपको, शिक्षा समझनी पड़ेगी। शिक्षा मतलब बोलना कैसे, मंत्रों को उच्चारण कैसे करोगे। बिना मंत्रों को उच्चारण करने आएगा तो मतलब नहीं निकलेगा उसका, मतलब बदल जाते हैं। और फिर कल्प, कल्प मतलब जो यज्ञ है, यज्ञशाला कैसे बनती है। और फिर उसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यज्ञ करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करा जाता है ना ज्योतिष, पता होना चाहिए ना ग्रह व्रह का है, तो वो सब यज्ञ करके फिर उसको समझना है। समझने की टेक्निक उपनिषदों में दी है, अगर वो नहीं करोगे तो ये नहीं समझ आएगा। फिर उसके बाद छंद, मंत्र छंदों में लिखे हैं। और निरुक्त, डिक्शनरी संस्कृत की। अब ये सब पढ़ के आप उपनिषद पढ़ोगे तो अब भगवद्गीता क्या बताया, भगवद्गीता के उपनिषदों का सार है। तो अब क्या भगवद्गीता पढ़ने के लिए भी कोई किताब की जरूरत है, 6 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या, भगवद्गीता का मर्म भगवद्गीता में ही व्यक्त है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवद्गीता ही ने भगवद्गीता को समझना सिखा दिया, बस अलग से कोई किताब, ये भगवान ने बोली है, भगवान ने पूरा सिस्टम बना दिया, पूरा पैकेज है। इस किताब को सही से पढ़ोगे समझ आ जाएगा, मगर सही से पढ़ने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर कि किसी चिकित्सक के निर्देश के अनुसार पढ़ना होगा, किसी भक्त के निर्देश अनुसार पढ़ना होगा, तब तब ये भगवद्गीता समझ आएगी। हालांकि इस किताब में भगवान ने समझा दिया कि समझना कैसे है, बट फिर भी किसी टीचर की जरूरत होती है, एटलीस्ट ये समझाने के लिए तो होगी कि इस किताब में ये लिखा है कि इसको समझना कैसे है। नहीं, इतना तो होगा, मगर वैसे पता है इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने कितनी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, नहीं ऐसे मतलब इस्कॉन में जब प्रभुपाद ने गीता लिखी, पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है गीता। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे गीता डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ऐसे केसेस हुए हैं कि एक डिवोटी ने एक व्यक्ति को अमेरिका फॉरन में भगवद्गीता दे दी, तो उसने आके उसने भगवद्गीता कूड़े में फेंक दी। वहां तो ऐसे ही होते ना, वहां उनको क्या ठीक है किताब मिल गई, कूड़े में फेंक दी। तो वो तो कूड़े साफ करने वाला आया होते हैं, उसने कूड़ा साफ किया, उसमें से गीता निकली। और एक्चुअली कूड़ा साफ करने वाला था, तो उसमें कूड़े में तरबूज पड़ा हुआ था आधा, तो उसने कहा बड़ा अच्छा तरबूज डाला। वहां तो ऐसे ही होते हैं, खा लेते हैं साफ वाफ करके। उसने निकाला तो उसके नीचे भगवद्गीता थी, उसने निकाला भगवद्गीता, उसने भगवद्गीता पढ़ी थोड़ी सी, और पढ़ के सीधा कहाँ पहुंचा, इस्कॉन मंदिर फुल टाइम बनने के लिए। और वो डिवोटी आज भी है, बता रहे थे वो ऐसे भक्त बने। तो ये भगवद्गीता की पोटेंशियल, मतलब ये तभी तो लिख रहे हैं भगवद्गीता का मर्म भगवद्गीता में ही व्यक्त है, इसको पढ़ के अपने आप समझ आ जाएगी किताबें। ये एक केस है, ऐसे कई केसेस हुए हैं जो कि एक माता जी बता रही थी कि वो भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूट करने गई अमेरिका में, घंटी बजाई तो अंदर से एक औरत आई, तो कह के दिखाया उन्होंने, देखे भगवद्गीता ये इस्कॉन की, ये प्रमाणिक भगवद्गीता पढ़िए। तो उन्होंने कहा गेट लॉस्ट, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं देखना भी नहीं चाहती गीता है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, मतलब आप देखना नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे पास अपनी गीता, मैं वो पढ़ती हूँ, वो बेस्ट गीता है, और मतलब उससे सिवाय बेस्ट कोई गीता ही नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो उसने कहा नहीं नहीं आप कौन सी गीता मुझे दिखाइए। तो उसने दिखाया, तो कौन सी गीता थी, भगवद्गीता ये थारू, पुरानी एडिशन थी इसलिए उसको ये समझ नहीं आया। उसने कहा यार ये तो उसने कहा ये वो ही तो है। उसने कहा ये न्यू एडिशन है। फिर उसने बुलाया, अरे आप अंदर आइए। तो उसने पूछा भी तुम्हें कहाँ से मिली। उसने कहा पता नहीं किसी ने डिस्ट्रीब्यूट करके गए थे और मैंने पढ़ी, मतलब मैं कन्विंस्ड हूँ कृष्णा भगवान है और उनको अपना जीवन देना है। तो उन्होंने कहा आप किसी से मिली डिपोटी से। उन्होंने कहा नहीं, मैं तब से गीता पढ़ रही हूँ और मैंने प्रचार भी शुरू कर दिया। मैंने कहा प्रचार की भावना आ जाती है ना अपने आप। उसने खुद ही प्रचार शुरू कर दिया। उसने 10 लेडीज 20-30 लेडीज खुद ही आके पढ़ रही थी और कह रही थी अब मैं कोई गीता नहीं देखना चाहती, किसी में कोई आंसर नहीं, ये पोटेंशियस गीता की नहीं। सो भगवद्गीता अपने आप ही समझा देगी क्या है अगर आप पढ़ोगे तो। बट फिर भी अगर टीचर है तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं, टीचर के बिना आप इसकी गहराई में नहीं जा सकते। समझ तो जाओगे मगर गहराई में नहीं जा पाओगे, दो अलग बात है ना, दो अलग बातें होती हैं। आपके पास आप कन्विंस्ड हो कि मुझे काम करना है, मगर टीचर है तो उस काम को और एक्सपर्टली कर सकते हो आप। ठीक है, कर सकते हो, आप कन्विंस्ड हो एक्सपर्टली कर सकते हो। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि कि भक्तों के निर्देश अनुसार चलना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर पैराग्राफ का पहला स्टेटमेंट ले रहा हूं और फिर पैराग्राफ खुद पढ़ लेगा, तो इस तरह से हम पूरी भूमिका कवर कर सकते हैं। ठीक है? नहीं ठीक है, ये मेथड चल रहा हूं। भक्तों के साथ पढ़ो, तो भक्त क्या करते हैं, भक्त आपको गहराई में ले जाएंगे अंदर, और गहराई में क्या होते हैं, समुद्र में आप जाओगे तो मजा आएगा ना स्विमिंग करने में, मैं गहराई अंदर जाओगे समुद्र के तह में तो क्या मिलेंगे आपको, हीरे मोती मिलेंगे, ऊपर नहीं मिलते वो। सो ठीक है, आप खुद पढ़ लोगे, कन्विंस हो जाओगे, करना है सब कुछ, मगर हीरे मोती चाहिए इसमें से, तो भक्तों के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भक्तों के साथ पढ़ो, हालांकि कंप्लीट है फिर भी यू नीड अ डिवोटी, एक टीचर चाहिए। इसलिए प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, शंकराचार्य, रावणाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सबने भगवीता को समझाया है, उसकी व्याख्या की है। नहीं ओके अब प्रभुपाद नेक्स्ट उसमें आ रहे हैं पैराग्राफ में। अब क्वेश्चन आया कि भगवदगीता शुरू कहां से, मतलब आई कहां से, टपकी कहां से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवदगीता इंसान ने लिखी है नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ऐसा लिखा है भगवान ने वाचा, मगर इंसान ने लिखी है, मतलब एटलीस्ट महात्मा गांधी तो ही मानते थे, जिन्होंने भगवदगीता प्रमोट करते थे, नहीं करते थे, मगर वो तो सोचते थे कि इंसान ने लिखी है, भगवान थोड़े ना बोलेंगे आकर। उस पॉइंट को काटने के लिए प्रभुपाद ने पपड़ शुरू किया। भगवदगीता तीसरे पेज पे, भगवदगीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं इमं विवस्पते योगं प्रोक्तम अवयमयम्। यहां पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवदगीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई, सूर्यदेव ने मनु को दी, इस तरह से परंपरा से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मनु ने इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु ने, फिर चलता जा रहा है। सो भगवदगीता, और फिर उसके बाद कृष्ण ने किसको दी, दोबारा से अर्जुन को बताई। सो प्रभुपाद ये पॉइंट क्यों उठा रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद इसलिए पॉइंट उठा रहे हैं क्योंकि कई लोगों को, कई लोग भगवदगीता मान भी लेते हैं मगर ये नहीं मानते कि भगवान ने बोली, ये नहीं, ऐसे महात्मा गांधी उन्होंने मान ली, उन्होंने कहा बहुत अच्छी किताब है, मैं रोज भगवदगीता पढ़ता हूँ, बोला है ना, आई थिंक इसके पीछे लिखा है, इसमें नहीं लिखा, पुराने एडिशन में लिखा था। सो बहुत अच्छा है, मैं फॉलो करता हूँ और मुझे फायदा हो रहा है, मगर ये नहीं मानते कि भगवदगीता भगवान ने बोली, उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, वो समझते हैं कि अच्छी किताब है, इसमें लिखा है, पीछे लिखा है, भगवदगीता पालन करने से अच्छा आदमी बनेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये नहीं मानोगे भगवान ने बोली है और आप केवल इसमें से अच्छा ही निकाल लोगे, तो 16वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा है कि वो लोग कौन होते हैं जो केवल अच्छे होते हैं, भगवान को नहीं मानते, वो असुर होते हैं। इनफैक्ट तो कल मैं महाभारत ही पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि जो लोग ज्यादा पापी होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे होते हैं, अच्छे मतलब ज्यादा पापी होते हैं वो ज्यादा अच्छाई दिखाते हैं अपने पापों को छुपाने के लिए। इसलिए आप देखो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं होता, कॉर्पोरेट वाले सूट बूट पहन के, सारे एटिकेट्स है, नहीं गांव वालों कहेंगे बकवास, ये तो बैठना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, ऐसे ही होता है ना, चलना भी नहीं आता। अब अंग्रेज आए तो उन्होंने तो बोला था ये ब्लैक डॉग्स इंडियंस, इनको ना बोलना आता, ना खाना आता, ना चलना आता, हम सिविलाइज्ड हैं, है नहीं, हमें एटिकेट्स, हम ये वो है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग इतने पापी हैं कि उनको अपने अपने पाप को छुपाने के लिए ज्यादा ही एटिकेट चाहिए।
तो सारा ज्ञान उनके शरीर से जुड़ा हुआ।
ठीक है, वो तो ठीक इसीलिए तो इसीलिए प्रॉब्लम है ना। सो पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है, अगर कोई बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तो वो अच्छा है, ज्यादा सिविलाइज्ड होगा तो इसका मतलब है कि वो बिना भगवान के, अगर आपको कहीं भी अच्छाई दिखाई दे रही है इसका मतलब उसके अंदर क्या छुपी है, बुराई छुपी है, 100% बुराई छुपी है। जो ज्यादा, इनफैक्ट पता है साइकोलॉजी में बोलते हैं, जो ज्यादा वो होता है ना, क्या कहते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता वो ज्यादा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है, देखा है ऐसा होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा हो जो जिसको आती है वो ठीक है, वो अपना सिंपल बोलता है, उल्टा होता है। इसलिए ज्यादा पापी होता है वो ज्यादा दिखाता है कि मैं, जो ज्यादा एटिकेट सीखेगा, ज्यादा कुछ करेगा, जो पापी नहीं है, जो कूल है, जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो ज्यादा नहीं दिखाते, यार खाट पे आके बैठे यार आराम से, ठीक है यार लस्सी पिलाओ इसको, वो उसको दिखाने की जरूरत क्या है, वो है ही अच्छा, उसको अच्छाई दिखा दिखाने, तो वो तो बाप अगर अच्छा ही है तो सामने वाला आदमी खुद ही समझ जाएगा अच्छा है, अच्छा नहीं तब तब छुपाना पड़ता है ना सब, थैंक यू वेलकम तब छुपाना पड़ता है, अंदर से बोल रहा है कुत्ते वो ये होता है बस। आजकल सोसाइटी यही है ना, सोसाइटी ये पॉलिश सोसाइटी है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए प्रभुपाद ये पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उठा रहे हैं कि हमें भगवद्गीता पढ़ने से पहले मानना पड़ेगा कि कृष्णा भगवान है। कंक्लूजन भगवद्गीता का है कृष्णा भगवान है, अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे सब बेकार हो जाएगा, सब नॉनसेंस हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद अगले पैराग्राफ में फोर्थ पेज पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, वह अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम पर यह रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। सो प्रभुपाद इस पोपट में क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद इसके इतने लंबे पोपट में लिख रहे हैं कि भगवद्गीता किसको समझ आ सकती है, एक भक्त को और एक मित्र, मतलब होता है प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कहीं संबंध होते हैं भगवान से, नहीं हाँ शांत रस, दास्य रस, साखे रस, माधुर्य रस, मगर पांच तरह के रस है नहीं भगवान के साथ, संबंध है नहीं है। प्रभुपाद यहीं पे लिख रहे हैं, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में, कोई सखा रूप में, कोई माता पिता में, कोई माधुर्य दंपति में, नहीं पांच तरह के संबंध है भगवान से। सबसे इंपॉर्टेंट संबंध कौन सा है इसमें से, शान दास्य साखे मात्सल्य माधुर्य, कौन सा कहोगे? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दास्य, क्योंकि नींव है ना वो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बिल्डिंग की? नींव है, टॉप फ्लोर नहीं है। टॉप फ्लोर वैसे सब चाहते हैं टॉप फ्लोर खरीदें, और महंगा भी सबसे वही होता है नहीं, मगर मतलब बेसमेंट तो सबसे ही मतलब फ्री होता है नहीं घर बार के लिए, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली बेसमेंट है, और बेसमेंट दिखाई नहीं देता, नींव दिखाई नहीं देती ना बिल्डिंग की, बिल्डिंग उसी पे खड़ी नहीं भटी तो बिल्डिंग हट गई। इसलिए दास्य रस माधुर्य रस दिखाई दे सकता है, गोपियां कृष्णा रासीला, मगर उसकी नींव क्या है? नींव दास्य है, दास्य वो दिखाई नहीं देगा आपको। इसलिए वृंदावन में लोग रासीला की बात करते हैं, ये वो गोपियां माधुर्य में खो जाते हैं, मगर नींव ही उड़ गई, दास्य उड़ गया, दास्य रस उड़ गया। और दास का केवल एक ही काम है, क्या काम है? सेवा। और सेवा का मतलब क्या है? नहीं, मतलब भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है? प्रचार। और हनुमान जी के लिए भी तो कहते हैं राम काज करे भी को आतुर, ये पता है किसको? मुझे पूरा नहीं पता है, एक लाइन पता है मुझे, हनुमान जी राम काज करे भी को आतुर, बस यही है। भगवान का काम, दास भगवान का काम पूरा करना चाहता है। और भगवान का काम क्या था जब संसार में आए थे? धर्म संस्थापना ही अर्थाय संभवामी, हो गया कि भगवान का काम धर्म की स्थापना ही तो है, वो हमें पूरा करना है बस। तो जो केवल माधुर्य भाव देखता है, नींव तो दिखाई नहीं दे रही दास्य भाव, वो क्या करेगा? वो वृंदावन में बैठ के गोपियां कृष्णा आप कौन हो? मैं गोपी हूं, ये होता है बस, हो रहा है नहीं हो रहा है वृंदावन में? या अपना बैठ के वृंदावन में बैठ के हरे कृष्णा, गलत नहीं है, आप बैठ सकते हो कि कृष्णा और राधा कितने सुंदर हैं, बुरा नहीं है, बट द पॉइंट इज कि उसकी नींव क्या है? नींव है दास्य। प्रीचिंग भगवान के बारे में बता, दुनिया को ये नहीं कि खुद समझ के बैठ जाने कृष्णा और गोपी कौन है, दुनिया को बताना है कि कृष्णा और गोपियां कौन है, भगवान की सबसे सबसे बड़ी डिवोटीज हैं। सो इसलिए प्रभुपाद ने इतना पॉपट लंबा दिया, पहले एंड में लिख रहे हैं मैं तुम्हें गीता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो। नहीं, मित्र का मतलब क्या है यहां पर? मित्र मतलब होता है, मित्र उसको कहते हैं जो दूसरे अपने मित्र के हमेशा कल्याण के बारे में सोचता रहे, मित्र वही है ना। मतलब एक होता है सुहृद मतलब कंपैशनेट, ठीक है मैं अच्छा करूंगा। एक होता है मित्र बहुत बड़ी चीज है। राम और सुग्रीव के बीच में क्या थी? मित्रता ही तो थी, सुहृदता नहीं थी। सुहृद मतलब होता है दया, आप पे कोई प्रॉब्लम हुई ठीक है चलो मैं दया करूं, आप प्रॉब्लम में हो मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी दया से। मित्र भी मित्रता में अलग होता है, अगर मित्र प्रॉब्लम में होता है तो क्या होता है? मित्रता में व्यक्ति अपनी जान भी दे सकता है उसके लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अगर आप केवल दया कर रहे हो उसमें जान नहीं देगा, फिर प्रॉब्लम है भी कितने पैसे चाहिए, ले तू 10,000 ले ले, प्रॉब्लम सॉल्व कर ले अपनी, जान थोड़े ना दूंगा तेरे लिए। मगर राम और सुग्रीव ने क्या शपथ ली थी पता है? शपथ ली थी ना मित्रता की, वहां बैठ के आपके किष्किंधा में, किष्किंधा के फॉरेस्ट मतलब गुफाओं में बैठ के। तो सुग्रीव और राम ने ली कि हम आज से मित्र हैं, और मित्रता का एक ही रूल है कि जब भी कोई समस्या आएगी तो हम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें गीता इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। गीता उसी को समझ आएगी जो भगवान का मित्र है, जो भगवान के कल्याण के बारे में, भगवान के कल्याण। अब ये थोड़ा अलग टर्म है मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि डिवोटी ऑलवेज थिंक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कृष्णा। दुनिया तो उल्टी है, नहीं दुनिया चाहती है कि भगवान हमारे कल्याण के बारे में सोचे, मगर भक्त क्या सोचता है कि हम भगवान के कल्याण के बारे में सोचे। अब ये चीज फिट करना बिना भक्तों के, बिना भक्तों के समझ नहीं आएगी। इसलिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि तुम मेरे, मैं तुम्हें गीता बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे क्या हो, भक्त और मित्र हो। क्योंकि भक्त को ही समझ आएगी मित्रता क्या है। अभक्त को समझा लो आप, भगवान के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हो, हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, नहीं यही कहते ना लोग, भगवान हमारी, हम तो भगवान से मांगेंगे हमारा कल्याण होगा। दैट्स तो भगवान हमारे लिए नहीं जी रहे, हमें भगवान के लिए जीना है, उल्टा है। सो भगवान का कल्याण क्या है? भगवान का कल्याण है कि भगवान का प्रचार हो, नहीं भगवान के बारे में पता लगे लोगों को, और भगवान खुद तो आके नहीं बताएंगे, अपना प्रचार करेंगे। वो डिपार्टमेंट किसको छोड़ा है प्रचार करने का? वो भक्तों को छोड़ा है। तो भक्त ही प्रचार करते हैं, भगवान नहीं करते अपने बारे में प्रचार। इसलिए इसलिए भक्तों का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अगर भगवान, अगर धर्म की स्थापना होगी, अगर मिशन फैलेगा भगवान का, तो वो केवल भक्ति कर सकते हैं, केवल हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व ज्यादा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे भक्त बनोगे और मित्र बनोगे तब ये किताब समझ आएगी, वरना किताब नहीं समझ आने वाली। बस भक्त मतलब कि तुम मुझे मानोगे, मैं भगवान हूं। इसलिए प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं कि गीता पढ़ने से पहले एटलीस्ट अर्जुन की तरह हमें कृष्ण को भगवान मान लेना चाहिए। एटलीस्ट मान के चलो भगवान, डाउट मत करो, और ये सोचो कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसको मैं बांटूंगा। ये दो काम करोगे तो समझ आने लगेगी। ये दो काम ने उड़ा दिए, कुछ भी समझ नहीं आएगा इसके अंदर। इतना बड़ा प्रॉपर प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद पांचवे पेज पे प्रभुपाद ने नेक्स्ट पैराग्राफ में शुरू कर रहे हैं, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद्गीता किस तरह ग्रहण की है। अब अर्जुन भक्त है, मित्र है, वो तो बात सही है, मगर अर्जुन सोच क्या रहा है अपने माइंड में, क्या उसकी चेतना क्या है? भगवद्गीता सुनते वक्त चेतना क्या होनी चाहिए? जैसे आप सुन रहे हो ना, क्या चेतना होनी चाहिए? कोई इच्छा होनी चाहिए? नहीं। कोई भौतिक इच्छा होनी चाहिए? नहीं, हमारे पास कोई इच्छा नहीं है। ये इच्छा होनी चाहिए कि भगवद्गीता सुन के हमें सुख शांति मिले? नहीं होनी चाहिए। क्या क्या सोचना चाहिए? वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दशम अध्याय में अर्जुन ने भगवान को स्तुति की है। ये श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भगवान की स्तुति भी कर सकते हो, श्लोक याद कर सकते हो, परम ब्रह्म परम धाम, आता है किसी को? पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्तम ऋषया सर्वे देवर्षि नारसक्त देवल आशितो देवल व्यास स्वयमेव ब्रवीषि मे। बहुत अच्छे श्लोक है ये, प्रेयर्स है भगवान के लिए, आप ऑफर कर सकते हो रोज कृष्ण को प्रेयर्स। इट्स वेरी नाइस श्लोक। और क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं? प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अर्जुन ने क्यों सुनी भगवान से भगवद्गीता, अर्जुन ने भगवान से भगवद्गीता सुनी ये समझ के कि भगवान कौन है, कृष्णा कौन है, परम ब्रह्म वो भगवान है। और वो किसने स्वीकार किया? भगवान नारद मुनि ने भी। वैसे श्लोक में पता क्या बता रहे हैं, कौन से एग्जाम्पल दे रहे हैं? देवर्षि नारद सथा, नारद ने आपको स्वीकार किया है भगवान, और किसने किया? आशितो देवलो, ये कौन है आशितो देवल? ऋषि मुनि थे। और व्यासदेव ने, और आप स्वयं खुद कह रहे हैं आप भगवान हैं। तो ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नारद मुनि किसके अवतार हैं? भक्ति के, मतलब अवतार नहीं, मतलब तो भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं। आशितो देवलो किसके आचार्य हैं? धर्म के। इनका बहुत बड़ा नाम है धर्म शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों के आचार्य हैं। और व्यासादेव किसके आचार्य हैं? ज्ञान के। सो अर्जुन कह रहे हैं भगवान देख लो, देख लीजिए, भक्ति भी कह रही है आप भगवान है, परम ब्रह्म है, धर्म भी कह रहे हैं आप परम ब्रह्म है, और ज्ञान भी कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म है, और आप स्वयं कह रहे हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने कोट कर दिया यहां पर भी। अगर आपको संशय है, आप कहोगे मैं कृष्ण को भगवान कैसे मानूं, तो लो गीता खुद ही बता रही है कृष्ण को भगवान क्यों माने, खुद ही बता रही है। तो लोग कहते हैं ना कि ये तो इंसान ने बोली है, नहीं? तो अब ये श्लोक कोट करो सीधा, इंसान ने, गीता खुद ही कह रही है, अर्जुन ही कह रहा है। अगर इंसान ने बोली होती गीता तो अर्जुन क्यों कह रहा होता कि ऋषि देवर्षि नारद भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं आप भगवान है, है नहीं? प्रूफ दे दिया, नहीं दे दिया? इसलिए प्रभुपाद ने कहा था गीता स्वयं अपने आप को क्या था, भगवदगीता का मर्म भगवदगीता में ही व्यक्त है, यहीं पे छुपा हुआ है। सो भगवदगीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया, प्रभुपाद अगले पर्वपट में लिख रहे हैं भगवदगीता सुनने का फल क्या होगा सीधा। भगवान ने भगवदगीता सुनने के बाद, भगवान से भगवदगीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम धर्म स्वीकार कर लिया। सो गीता पढ़ने का लक्ष्य क्या है कि हम क्या मान लें कि कृष्ण भगवान। गीता पढ़ने का लक्ष्य नहीं है कर्म करो फल की चिंता मत करो, गीता पढ़ने का लक्ष्य नहीं है गीता पढ़ के पॉलिटिक्स करो, मतलब ऐसा नहीं जैसे महात्मा गांधी ने की, दैट वाज समथिंग रॉन्ग। गीता पढ़ने का लक्ष्य नहीं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करते रहो, गीता पढ़ने का लक्ष्य है कि हमें विश्वास हो जाए कि कृष्ण भगवान है, बस उनसे ऊपर और कोई नहीं है और ना हो सकता। न तत् समस अवेदकस् च विद्यते, उपनिषद कह रही है उनके समान और उनसे ऊपर कोई नहीं है बस। और ये उनसे समान और उनसे ऊपर कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर आप ये समझ गए तो, अगर आप ये समझ गए तो क्या करोगे, तो क्या करोगे? गीता खुद ही कह रही है क्या करोगे, अहम सर्वस्य प्रभव इति मत्वा भजन्ते मा। अगर कोई समझ गया भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, भगवान ही संसार में सब कुछ है, तो बस तो उनकी सेवा करना शुरू करोगे। वैसे पता है भाई साहब, मैं कल पूरी रात पढ़ ही रहा था, अपनी साइंस की कुछ किताब लिख रहा था, तो मैं पढ़ रहा था, कुछ काम कर रहा था। वैसे एक सोचने वाली बात है कि लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, नहीं कहते नहीं, दिखाओ भगवान, मगर इतनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि कितना भगवान ने क्या प्रमाण दिया कि वो है। अगर कोई पूछे भगवान प्रमाण क्या है, ठीक है अर्जुन कह रहा है भगवान है, वो तो कह रहा है, कई लोगों ने माना है, आप कोई प्रमाण दे सकते हो कि भगवान है, क्या दोगे, क्या दोगे? वेल प्रमाण आपके सामने, क्या इतना बड़ा ब्रह्मांड नहीं है, किसी ने तो बनाया होगा ना। अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होना चाहिए, नहीं तो प्रभुपाद ही कहते थे पेंटिंग है तो पेंटर होना चाहिए। अब ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, मगर साइंस ने इतना उलझा दिया इन चीजों को कि इतनी बच्चों वाली बात समझ ही नहीं आ रही, इतनी बच्चों वाली बात समझ नहीं आ रही। सो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है, दिखाई दे रहा है भगवान है। बट अगर आप, मगर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने जान लिया भगवान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे अर्जुन ने समझ लिया कि कृष्णा कौन है, भगवान है, इसमें ये तो पहला स्टेप है, मगर दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ी बात वो होगी जब आप भगवान की बात मानना शुरू करोगे, वो बड़ी बात है। इसलिए जब भगवान कह रहे हैं कि, प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान से भगवदगीता सुनने गया अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया, कहने का मतलब है कि भगवान की बात मानना शुरू कर दी। अब भगवदगीता सुनने से पहले भी अर्जुन को पता तो होगा कृष्ण भगवान है, नहीं ऐसा तो नहीं है, पता ही होगा, पता ही था भगवान क्या रह रहे, मगर फिर भी अर्जुन ने भगवान की बात मानना कर दी नहीं थी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और गीता सुनने के बाद क्या हुआ, अब बस करूंगा, अब फर्क ये हो गया, वरना उसको पता था भगवान है, क्योंकि भगवान ने कई बार अपना विराट रूप दिखाया, पहली बार नहीं दिखाया, मतलब भगवान ने यशोदा माँ को दिखाया था अपने मुख में नहीं, गोवर्धन उठाया नहीं था उंगली में, तो अर्जुन ने सुना तो होगा सारी, ऐसे थोड़े ना उसको पता ही नहीं होगा, अर्जुन ने सुना तो होगा कृष्ण ने वृंदावन में ये किया है वो किया है, तो मतलब बुआ से सुना ही होगा, तो इनफैक्ट सुना ही था। भागवत में आता है कि कुंती महारानी जब तो जब आपकी वो नहीं होती, जब यशोदा माँ ने बांधा था कृष्ण को दामोदर लीला, तो कुंती महारानी वृंदावन में ही थी, वो विजिट करने गई हुई थी। अब जाते तो होंगे ही विजिट करने, अब बुआ है तो मिलने गई हुई थी, वो वहां पे थी। और भागवतम में प्रमाण है कि तभी कुंती महारानी प्रे कर रही है कि यद विभेति स्वयं भयम, कि कृष्णा यशोदा माँ से डर रहे हैं। ये वही कृष्णा है जिनसे भय भी स्वयं भय करता है, और आज ये यशोदा माँ से भय कर रहे हैं। पढ़ लो भागवत में स्तुति है। सो इसका मतलब कुंती महारानी वहां थी, सपना थोड़ा ना आ रहा है। सो कुंती वहां थी, और मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, मैं
भगवान है अर्जुन को बताते भगवान है।
तो अर्जुन ने सुना ही होगा कुंती से फिर आकर कि बुआ माँ क्या माँ थी ना, तो कुंती महारानी बात होगी कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, देखो पूतना को मार दिया, ये किया वो किया, ही न्यू भगवान है। बट ऑफकोर्स उनके मित्र भी थे, मगर इस पॉइंट पे आके उसको उसने भगवान की बात मना कर दी करना, बस फर्क ये हुआ। तो इसलिए कृष्णा को पूरी गीता में बोलना पड़ा कि मैं भगवान हूं। देखो अर्जुन कृष्णा ये नहीं बता रहे मैं भगवान हूं कि बताने के लिए कि मैं भगवान हूं, वो तो पहले ही बता उसको। कृष्ण बता रहे मैं भगवान हूं ये बताने के लिए, अर्जुन मैं भगवान हूं, मेरी बात को मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कौन हूं, तुम्हें पहले ही बताता भगवान हूं मैं, मगर तुम्हें ये नहीं पता था कि भगवान की बात को कभी मना नहीं कर सकते, ये फर्क है बस। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि वो परम ब्रह्म है, कहने का मतलब है भगवान के आदेश फॉलो कर लिए। सो इस दुनिया के लोग ऐसे हैं ना सब, कई लोग तो मानते हैं कृष्ण है, उनकी बात नहीं मानते। नहीं हमारे डिवोटीज में भी ऐसी है, नहीं ऐसे ही है, कई लोग तो कहते हैं हाँ भगवान है हो गया अभी ठीक है, मगर बात बात नहीं मानते। ऐसे भी है नहीं, हम दीक्षा ले लेते हैं, कंठी भी पहन लेंगे, तिलक भी ला लेंगे, माला भी कर लेंगे, ठीक है थोड़ी बहुत बात मान ली तो हमने, मगर भगवान की बात मानने का मतलब है 100% 99.9% नहीं चलेगा, क्योंकि 1% भी आपने छोड़ दी भगवान की बात तो कहाँ जाओगे आप। युधिष्ठिर महाराज गए थे ना, एक बात मना की थी ना, और कहाँ गए, एक दिन तो जाना पड़ा उनको। सो आप एक बात भी मना नहीं कर सकते भगवान की, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, आपके पापा नहीं कह रहे, उनकी बात मना कर सकते हो। सो इसीलिए गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये जानना कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, चाहते क्या है, और उसका हर श्लोक आपको फॉलो करना पड़ेगा, हर श्लोक, तब समझ आया कि कृष्णा भगवान है, समझे। पॉइंट ये है, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे भगवान की हर बात, तो इसको आपको समझ ही नहीं आया कि मेरे सामने कौन खड़ा है, भगवान खड़े हैं, बस आप थ्योरी में बोल रहे हो भगवान खड़े हैं। तभी तो गीता में पढ़ रहे हैं, गीता क्यों पढ़ रहे हैं, वरना तो हम आपको बोल रहे हैं जप करो, ये लो माला, भगवान का नाम लो और बैठ जाओ, यही करते हैं ना लोग, होता तो यही है, नाम लो और बैठ जाओ, ना गुरु को मतलब है शिष्य से, ना शिष्य को मतलब है गुरु से, वो चलता जा रहा है फोटो लगा के फूल, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि भैया वो गीता समझाए और ये बताए कि भगवान को क्या चाहिए आपसे, और पूछे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हमने कितना सब कुछ पढ़ा नहीं गीता में, तो आप चेक करो कि क्या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, और डिलीट मत करो, डिलीट मत, भगवान की ज़्यादा डिमांड्स नहीं है वैसे। अगर भगवान डिमांड करने लगेंगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए छोटी किताब बोल दी नहीं, अगर बड़ी किताब बोलते ज़्यादा डिमांड्स हो जाती फिर आप मर जाते। सो देर आर सम थिंग्स यू कांट डिलीट, ठीक है। तो प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद ने ये पॉपर्ट ये पैराग्राफ में लिखा है। अब प्रभुपाद एक क्वेश्चन उठा रहे हैं अगले पैराग्राफ में, कोई सोच सकता है कि क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। ये अच्छा पॉइंट है वैसे, मतलब पॉइंट उठाने वाला नहीं था, बड़े पॉइंट है कि कोई सोच सकता है कि अर्जुन भगवान को क्या कर रहे हैं, फ्लैटरिंग, परम ब्रह्मा परम नाम भगवान है आप, ये है आप वो है, एक्चुअली कृष्णा भगवान नहीं है, मगर अब वो मित्र है तो फ्लैटर कर रहे हैं। नहीं जैसे जैसे प्रेमी करते अपनी प्रेमिका को, तुम तो अप्सरा हो, तुम तो पता नहीं क्या हो, चांद की टुकड़ी हो, मगर साइड वाला आदमी कह रहा होगा यार इससे कुरूप औरत नहीं देखी मैंने, पता नहीं कहाँ फंस गया है। ऐसा होता है। सो ऐसे ही वो कह रहे हैं प्रभुपाद की हो सकता है भगवान को चाटुकारिता करे, उसको फ्रेंड है ना, फ्रेंड का तो अब शिशुपाल तो गाली दे रहा था ना, तो वो गाली क्यों दे रहा है, अर्जुन बोल रहा है तो हो सकता है, बट प्रभुपाद लिख रहे हैं लेकिन अर्जुन भगवद्गीता के पाठकों से के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में प्रशंसा की पुष्टि करता है जब वह कहता है कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद आसिता देवला व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो अगर कोई कहे कि कृष्णा तो इंसान थे हम कैसे मान ले भगवान है, तो आप बोलो देखो कौन मानता था, नारद मुनि मानते थे, आसे तो देवला मानते हैं, भक्ति के आचार्य मानते हैं, ज्ञान के आचार्य मानते हैं, धर्म के आचार्य मानते हैं, तुम किसके आचार्य हो बताओ जो तुम नहीं मान रहे हो कृष्ण को भगवान, ये बताओ, तो ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे, ठीक है नहीं ठीक है। अब ये डायलॉग याद कर लो आप, बस सीधा उस पर मारना सीधा वहीं पर कि नारद भक्ति के आचार्य थे वो भगवान को मानते हैं, आसे देवला धर्म के आचार्य थे वो मानते हैं, व्यासदेव ज्ञान के आचार्य वो मानते हैं, और तुम किसके आचार्य हो ये बताओ कि तुम कृष्ण को इंसान मानते हो, सिंपल हो गया, दैट्स ऑल। सो रिफ्यूट भी करना आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आप पता नहीं क्या बोलते रहोगे। सो ओके, अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, अतएव भगवद्गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, नहीं ये सोचना चाहिए कृष्ण सामान्य पुरुष है और एक महानतम व्यक्ति है। प्रभुपाद अपने इंग्लिश में गीता में लिख रहे हैं किसी को नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण ऑर्डिनरी आदमी है या सुपर ऑर्डिनरी आदमी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, सुपरमैन भी नहीं है कृष्ण, कृष्ण कौन है, साक्षात भगवान। कुछ लोग कहते हैं एक्चुअली प्रभुपाद पता है क्यों लिख रहे हैं, प्रभुपाद ने जो भूमिका लिखी है ना ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद ने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, पढ़ी है एक्सपीरियंस प्रीचिंग करके मिल चुके हैं सारे लोगों से, तो प्रभुपाद हर एक संदेह को काटते जा रहे हैं, लोग यही बोलेंगे आपसे यही बोलेंगे, और प्रभुपाद हर डाउट को काटते जा रहे हैं एक एक पैराग्राफ में। सो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण एक महान क्या थे, योगी थे, कुछ लोग कहते हैं आप चले जाओ आप हिमालय चले जाओ, योगेश्वर थे कहते हैं आपके आपके व्यू भुवनेश जो 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 आपके ज्योतिष होते हैं उनको ये कहने में बड़ा मजा आता है, कृष्णा कौन थे, योगेश्वर थे, तो कुछ लोग कहते हैं योगेश्वर थे, हम ये नहीं कह रहे इंसान थे मगर योगेश्वर थे, इसलिए उनकी गीता पढ़नी चाहिए क्योंकि योगेश्वर है ना वो, तो प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि वो योगेश्वर भी नहीं है, वो कौन है, वो भगवान है, इंसान तो छोड़ दो, वो सुपरमैन भी नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है, वो भगवान है,
योगेश्वर तो नाम भी रखा
नहीं, वो योगेश्वर इस सेंस में कह रहे हैं कि महान योगी है, बस इतना मानते हैं, योगी लोग ऐसे मानते हैं योगेश्वर है महान योगी, आप चले जाओ ऋषिकेश सब यही कहेंगे योगेश्वर बोलना, अब जो फॉर एग्जाम्पल आर्य समाज यही कहते हैं, अब नाम भी बता देता हूँ, वो भगवान नहीं मानते कृष्ण को, कहते योगेश्वर है महान योगी है और उनका ज्ञान अच्छा है, सुनो उनका ज्ञान, मगर भगवान नहीं है वो। So that's that, प्रभुपाद नाम नहीं ले रहा है समाज का, मगर जिसको पता है उसको पता है किसके बारे में बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में, फिफ्थ चैप्टर के फिफ्थ पेज के आखिरी पैराग्राफ में, वो पता है हमें किसके बारे में बोल रहे हैं, इसलिए भक्तों के साथ पढ़नी चाहिए, नहीं आपको समझ आ जाएगा कि प्रभुपाद के माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं और उसको एक एक चीज काटते जा रहे हैं। ऑफकोर्स नाम नहीं ले रहे क्योंकि नाम नहीं ले सकते ना किताब के अंदर प्रिंट करके, वरना तो बवाल हो जाएगा, मगर लेक्चर में बोल सकते हैं नहीं क्योंकि अगर कोई बोलेगा आपने ऐसा बोला है तो हम बोल देंगे नहीं नहीं वो तो मुंह से निकल गया था, अब प्रिंट ही हो गया तो क्या करोगे मुंह से कहाँ निकला है फिर लड़ाई हो जाएगी। सो प्रभुपाद काट रहे हैं उनको आर्य समाज जी को यहाँ पर कि वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, एक महानतम व्यक्ति भी नहीं है, योगेश्वर भी नहीं है, वो स्वयं भगवान है, नॉनसेंस। अगर ऋषिकेश में जाओगे सब यही बोलेंगे, शिवानंद योगी जाओ आप, चिन्मय मिशन चले जाओ, वो सब ये बोलते हैं वो महान योगी थे, अपने क्या कहते हैं मुक्त पुरुष थे, भगवान नहीं थे, इसलिए उनकी बात समझनी चाहिए फिर आप भी मुक्त हो जाओ। सो प्रभुपाद एक्चुअली प्रभुपाद अपने इस प्रॉपर से मायावाद काट रहे हैं, बेसिकली मायावाद आत्मिक परमात्मा बन जाती है उसको काट रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद के प्रॉपर्स आसान नहीं है समझना, इतने आसान नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसके अंदर, ओके सो नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं तो भगवद गीता क्या है. अब भगवद गीता के बारे में बता दिया नहीं बता दिया, अब पॉइंट उठा रहे हैं कि भगवद गीता है क्या. तो भगवद गीता उपनिषद है तो हमने मान लिया. भगवद गीता का विषय वस्तु क्या है, विषय क्या है, मतलब क्या है. ठीक है, भगवद गीता बता रही है कृष्ण भगवान है, मगर उद्देश्य क्या है भगवद गीता का, एम क्या है. एक लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं एम क्या है. भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार से अज्ञान से उभारना है, बस ये है. अभी आपको सिंपल लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल है डिफिकल्ट है आपको ज्ञान में तो पता ही है.
भौतिक संसार इतना डिफिकल्ट है तो
सो ये वैसे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे स्टेटमेंट को. भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उभारना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद ने ये नहीं बोला भगवद गीता का प्रयोजन क्या है ये बताना है कृष्ण भगवान है, ये नहीं बोला. बोला बोलना वैसे चाहिए था अगर आप अपनी बुद्धि लड़ाओगे. भगवद गीता क्यों पढ़े, क्योंकि हमें पता लग जाए कि कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए. मगर प्रभुपाद ने नहीं बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों बोल रहे कि अज्ञान से उभारना है, ऐसा क्यों नहीं बोला कि ये बताना है कृष्ण भगवान है उनकी भक्ति करो नाम लो हो गया.
भगवत गीता सभी के लिए है, मतलब वो एक जनरल, मतलब केवल वो जो भगवान कृष्ण को ही भगवान माने ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल बुक विच इज ओपन फॉर एवरीवन.
ठीक है, ये भी पॉइंट कह सकते हो, ये पॉइंट कह सकते हो. हाँ, ये एक पॉइंट कह सकते हो कि भगवद गीता किसी सेक्ट के लिए नहीं है. अगर आपका भगवद गीता का प्रयोजन क्या है, ये मानना कृष्ण भगवान है, तो क्या आप मुस्लिम नहीं पढ़े, क्रिश्चियन नहीं पढ़े, पहले रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो है ही नहीं. तो भगवद गीता प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए जो ज्ञान से बाहर निकलना चाहता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ABCD एक्स वाई जेड हो, कोई सेक्ट नहीं है ये. तो सेक्ट को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको हाँ हाँ
समुदाय समुदाय
नहीं तो तो कोई संप्रदायवाद नहीं है. संप्रदायवाद कहते हैं ना, हाँ कोई की हमारी किताब है हिंदुओं की, या संप्रदायवाद नहीं है इस कौन की किताब है, नहीं ये सबके लिए है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञान से उभरना आता है, अज्ञान से दुख आता है. प्रभुपद एग्जाम्पल दे रहे, अर्जुन कठिनाई में फंसा था, भगवान ने ज्ञान देकर हटा दिया. हर वो व्यक्ति जो दुखी है उसके लिए भगवद गीता, हर जो व्यक्ति जो प्रॉब्लम्स में उसके लिए भगवद गीता है. और कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रॉब्लम में नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है. और जो कह रहे हैं मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, इसका मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम में तो वो ही है नहीं इसका मतलब पागल है साइको है, वो साइको आदमी कहेगा मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, और कोई नहीं कह सकता, या तो डिवोटी कहेगा, बाकी लोग तो सबको पता है कि हजार झंझट है यहाँ पर. नहीं अगर कोई झंझट नहीं तो शरीर तो झंझट है ही, ये तो इतना बड़ा जो शरीर है ये तो झंझट है, खिलाना है पिलाना है सुलाना है उसकी देखभाल करनी है, फिर भी खराब हो जाएगा, झंझट है नहीं है. उस चीज़ की देखभाल कर रहे हैं जिसका पता है हमें कि खराब होना ही है, लो मतलब गारंटीड है खराब होगा, फिर भी देखभाल कर रहे हैं, मतलब ये कैसी बात है. नहीं ऐसा कभी होता है, मतलब जब आपको शरीर मिला तो आपको गारंटी दी गई कि ये खराब होगा, फिर क्यों देखभाल करें, फिर भी करना पड़ेगा, ये ऐसा कभी नहीं हुआ. नहीं कोई ऐसा सामान नहीं बेचता, गारंटी देते हैं कभी खराब नहीं होगा, फिर आप थोड़ा देखभाल करते रहो बट ये अजीब सामान है,
खराब होगा
होगा
करो
फिर भी करो, तो ये प्रॉब्लम है नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है. सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भगवद गीता मनुष्य को अज्ञान और दुखों से उभारने के लिए, हरेक के लिए ओपन, इट्स ओपन इन्विटेशन. और अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य को में केवल कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वह क्या है और इस विषम स्थिति में क्या क्यों डाले गए हैं आदि आदि. फॉर एग्जाम्पल सो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि हर व्यक्ति को कष्ट है, मगर हर व्यक्ति ये जिज्ञासा नहीं करता कि कष्ट क्यों है, ये नहीं करता. मोस्टली लोग सोचते हैं कष्ट है ठीक है चलो हटा देंगे, यही है ना, जुगाड़ करके लोग तो कहते हैं कष्ट तो सबको ही आता है, ये थोड़े ना पूछते हैं क्यों है, आता है तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है अपना काम करो, हटा दो, क्या हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। बट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं कि कष्ट हटाए कैसे, क्वेश्चन है कि कष्ट क्यों है, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। और जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है कष्ट क्यों है, उसके लिए भगवद्गीता है, वो उसके लिए उसको समझ आ जाएगा अभी क्यों है, अब भगवद्गीता पढ़ो क्यों है, तब नींद आएगी। कष्ट हटाना है, अगर ऐसे सोचोगे ना कष्ट हटाना है तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे, तो गीता चुनोगे या संसारी सॉल्यूशन, संसारी सॉल्यूशन सीधा कर्मकांड तो गया काम से, संसारी सॉल्यूशन या आपका ज्योतिष, कष्ट हटाना है ठीक है ज्योतिष आप ये पहन लो वो पहन लो कर लो, या कष्ट हटाना है तो एसी और जुगाड़ करते रहो। मगर अगर आप पूछो कष्ट क्यों है तो सॉल्यूशन नहीं है वहां, किसके पास सॉल्यूशन है पूछ लो, प्रॉब्लम्स क्यों है, लोग कहते हैं पता ही नहीं यार, पता ही नहीं क्यों है प्रॉब्लम में फंसता रहता हूं, यही कहते हैं ना, पता नहीं मुझ पे क्यों प्रॉब्लम आती है, यही आपके पास यही तो आते नहीं, पूछते नहीं, पूछते हैं ज्योतिष लोगों से मुझे प्रॉब्लम क्यों है, पूछते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं हटाए कैसे, हटाए कैसे, नहीं कोई नहीं पूछता क्यों है, ये क्वेश्चन आते ही नहीं उनके माइंड में क्यों है, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि लोगों को लगता है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यार ये तो लाइफ है, हर एक को प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या फर्क, होती हैं ये तो होती हैं, ठीक है क्योंकि मर जाता है तो कहते हैं हाँ ठीक है सभी मरते हैं, यही कहते हैं ना, दिलासा देते हैं सभी मरते हैं, दुखी क्यों हो, तो ये नहीं पूछा क्यों मरना है, किसी ने नहीं पूछा आज तक, भाई मरना ही क्यों है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कभी मरूं नहीं, कोई नहीं पूछेगा ये, ये क्वेश्चन माइंड में आएगा नहीं, और ये क्वेश्चन कब आएगा माइंड में, ये इस क्वेश्चन से तो भगवद्गीता शुरू हो रही है, यही तो भगवद्गीता, अर्जुन का पॉइंट ये था, भगवान ऐसे मर जाएंगे मैं भी मर जाऊंगा फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, नहीं ये मर गए तो मैं कैसे रहूंगा सुखी, ये वो नहीं, प्रॉब्लम सोच रहा है ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ नहीं रहा, भगवान ने कहा बेवकूफ ये मत सोचो कि मर जाएंगे, ये सोचो कि क्यों मरेंगे, इसका बताओ तुम ये क्या सोच रहे हो, ये मर जाएगा नहीं मरेगा ये छोड़ दो, इंसान मरता ही क्यों है, इस क्वेश्चन से शुरू हो रहा है ना गीता, यही शुरू हो रहा है ना, तभी तो भगवान ने कहा कि अर्जुन अगर ये क्वेश्चन उठाओगे कि मरते ही क्यों है, तब समझ आएगा आपको कि एक्चुअली कोई मरता नहीं है, तब अर्जुन को समझ आया भाई ये तो बहुत हाई फाई फिलोसफी, कोई मरता ही नहीं तो फिर तो मैं जब मार रहा हूं इनको तो मरेंगे ही नहीं, तब वो कन्विंस होना शुरू हुआ नहीं कि अब मैं युद्ध करने के लिए रेडियो, एक इनसाइट पहुंची ना अर्जुन को, सो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते नहीं होते, अगर आंसर इंपॉर्टेंट होते हैं उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए गीता क्वेश्चन भी दे रही है, तो अर्जुन ने कई क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, अर्जुन ने कितने क्वेश्चन पूछे थे गीता में, आई थिंक 23 क्वेश्चन पूछे हैं कुछ अर्जुन ने, तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन से ही फिर आंसर आता है नहीं, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं इस पर्पट में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, गीता पढ़ के क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपके पास कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, और फिर उसका आंसर भी गीता दे देगी, कंप्लीट बुक है नहीं है, कंप्लीट बुक है अपने में उसमें आंसर भी दे दिया, और जब तक ये क्वेश्चन, जब तक आप गीता नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन आएगा नहीं, और जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या होगा, प्रभुपाद अपने अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं, जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, जब क्वेश्चन को भूल जाता है तो कौन आता है फिर, यहाँ याद दिलाने के लिए भगवान आते हैं, क्वेश्चन दिलाने के लिए याद आते हैं, आंसर तो बाद में होगा, आंसर बाद में होगा, पहले क्वेश्चन तो सुन लो भाई, क्वेश्चन ही भूल गए हम, वही उड़ा दिया, ये तो आंसर ही नहीं है, आंसर कोई ढूंढ ही नहीं रहा आंसर, दैट्स ऑल, मतलब संसार किसने बनाया है ये क्वेश्चन ही नहीं है ना किसी के पास, ये पढ़ाते हैं हमें क्वेश्चन, संसार किसने बनाया पढ़ाते नहीं है, संसार है क्या तो दिखाई क्या दे रहा है और उसको यूज कैसे कर रहे हैं अपने लिए, इतना है, अब जो क्वेश्चन ही नहीं तो आंसर क्या आएगा, फिर आपको गीता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहाँ ढूंढोगे, तो इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, और अवतार लेके भगवान भगवद्गीता का प्रवचन करते हैं जिसमें वो प्रवचन भी देते हैं और उत्तर भी देते हैं, सो कंप्लीट बुक है एक्चुअली, प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अल्टीमेटली कि ये कंप्लीट बुक है, इनकम्प्लीट नहीं है, उपनिषदों में जनरली क्वेश्चन उठाए गए, उपनिषद पढ़ोगे ना उसमें क्वेश्चन उठाए गए, आंसर नहीं है वहां, आंसर नहीं है, इसलिए उपनिषद आंसर के लिए क्या कहते हैं, क्या तो उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि भगवान का, भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पांव नहीं है, भगवान की आंखें, भगवान की आंखें नहीं है, भगवान देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते, सब लिखा नहीं लिखा है। भगवान को आप अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, ये चीजें बोली हैं। अब एक क्वेश्चन है नहीं, आंसर तो आप उपनिषद क्या कहते हैं, ध्यान लगाओ, समाधि में जाओ और आंसर फिर मिलेंगे। उपनिषदों उपनिषदों का ऐसी बात है, ध्यान लगाओ, नया आत्मा प्रवचन न लभ्य हो न बहु न न श्रुते न वा, ज्यादा प्रवचन से ज्यादा सुनने से आपको नहीं समझ आएंगे, ध्यान लगाओ। अब ध्यान लगा के उसको आंसर आ जाएंगे। अब वो कितने लोग ध्यान लगाएंगे, कितने लोगों को आंसर आएगा। इसलिए भगवत तो क्या बोला है भगवान ने, गीतो गीता उपनिषद और बाकी उपनिषद में फर्क एक और ये है, एक फर्क ये है, फर्क ये है कि उपनिषदों में केवल क्वेश्चन दिए, आंसर छुपे हुए, भगवत में क्वेश्चन भी और आंसर, आंसर भी भगवान ने खोल के बता दिए सारे। चलो भी ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझसे सुन लो, या तो ध्यान लगा लो करोड़ों वर्ष, वहां से सुन लो, बस यही फर्क हो गया ना भक्ति और ध्यान में। प्रभुपाद कह नहीं रहते भक्ति श्रेष्ठ है ध्यान से, है नहीं, ये तो कहते हैं सत्ययुग के लिए ध्यान था, अभी के लिए क्यों श्रेष्ठ है भक्ति ध्यान से, अब समझ आ गया आंसर क्यों है, सीधे आंसर मिल रहे हैं। ध्यान लगाने, ध्यान तो तभी लगाते हैं ना आंसर ढूंढने के लिए, कौन है भगवान, जैसे बुद्धा निकल गए, नहीं लग गए जानने के लिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलू कैसे, ध्यान में बैठ गए तो हमें बैठने की जरूरत नहीं, हमें तो आंसर ही पता है कैसे निकले, बस भगवान ने बता दिया मेरी सेवा करो निकल लो, तो हम बेवकूफ है ध्यान लगाएंगे। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए हमें ज्ञान पीएचडी करने की भी जरूरत नहीं है, हम पूरा पीएचडी करके आएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीतो उपनिषद, सारे उपनिषदों का सार है, सारे उपनिषदों का सार है, क्योंकि इसमें आंसर भी है, डायरेक्ट आंसर है। सो भगवान ने अवतार लेके हमें आंसर बता दिए, और अब उसके बाद मैं कल करूंगा। ओके एनीवे, आप ये लास्ट पैराग्राफ कर देता हूं। तो छठे पेज के आखिरी पैराग्राफ में भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के उत्सव में वह ज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के बीच बारे में प्रश्न कर रहा था। अब यह नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन अज्ञान में था, अर्जुन हमारे कल्याण के लिए पूछ रहा था, वो तो मैंने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट चैप्टर में, सब कुछ डिस्कस्ड है, कैसे फर्स्ट चैप्टर सुनोगे तो कैसे अर्जुन शुद्ध भक्त भी है और अभी थोड़े टाइम के लिए ज्ञान में आ गया है, थोड़े टाइम के लिए देखकर, मगर एक्चुअली शुद्ध भक्त है। और भगवान ने क्यों अलाउ किया अर्जुन को ज्ञान में जाने के लिए, कि भगवान वहां से अर्जुन क्वेश्चन पूछ ले हमारे बेनिफिट के लिए, है नहीं। सो यहां पे अर्जुन ने युद्ध नहीं करके भगवान की सेवा को मना किया है नहीं, मगर दूसरे एंगल से सोचोगे तो क्या है, अर्जुन ने युद्ध नहीं करके भगवान की सेवा कर डाली। प्रभुपाद यही कह रहे हैं, कैसे सेवा कर दी, भगवान से भगवत गीता बुलवाकर। सो आप देख रहे हो, भक्त कुछ भी करेगा, कोई भी क्रिया करेगा, वो क्या होगी, वो सेवा ही होगी, अपने आप सेवा बन जाएगी, अपने आप बन गई सेवा, ये भक्त है। हम कुछ भी करेंगे क्या हो जाएगा, अपने आप भोग बन जाएगा अपने आप भोग बन जाएगा कोई आदर करने की जरूरत नहीं हमारी ट्रेजेडी यही है, हमारी ट्रेजेडी है। अर्जुन को देखो, अर्जुन थोड़े टाइम के लिए माया में आ गया, मगर माया में आके भी वो भगवान की सेवा कर गया, देख रहे हो। हम भगवान के पास बैठ के भी सेवा नहीं कर पाते, ये फर्क है अर्जुन और हमारे में। तभी तो भगवान ने अर्जुन को गीता बोली, हमें थोड़ा ना बोली है केशवानंद को या भावेश को, या हम तो पता नहीं क्या कचुंबर निकाल देते। इसलिए अर्जुन स्पेशल है, ये भक्त और अभक्तों में फर्क होता है, भक्त की सारी क्रियाएं सब कुछ सेवा होती है, हम गड़बड़ करते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रपट में ये लिख रहे हैं कि अर्जुन ने दूसरों के कल्याण के लिए पूछी थी, पॉइंट ये। हरे कृष्णा। सो कल हम इस भूमिका को आगे बढ़ाएंगे, अच्छी है नहीं भूमिका, अच्छी है नहीं है, अब जाके पढ़ना, अब आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी इसके अंदर। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है, स्टॉप।